नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक मजबूत एशियाई विकास बैंक की जरूरत पर जोर दिया है। सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमें ऐसे ADB की जरूरत है जो सतत और जुझारू क्षेत्रीय विकास के लिए वृद्धिशील नहीं बल्कि बदलाव वाला रुख अपनाए। सीतारमण ने कहा कि आज दुनिया ईंधन, भोजन, उर्वरक, ऋण, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, वित्तीय स्थिरता आदि के पुनर्स्थापना के दौर से गुजर रही है। ऐसे में हमें एक मजबूत ADB की आवश्यकता है जो वृद्धिशील के बजाय बदलाव वाला रुख अपनाए। सीतारमण यहां ADB की 56वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने आई हैं। भारत 1966 में गठित इस बहुपक्षीय वित्तीय एजेंसी का न केवल संस्थापक सदस्य है बल्कि चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सालाना बैठक का विषय रिबाउंडिंग एशिया रिकवर, रिकनेक्ट एंड रिफॉर्म है, जो भारत की G20 के अध्यक्षता की भावना और विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद की दुनिया में विकासशील देशों के सदस्यों को ADB से अधिक संसाधनों और परिचालन दक्षता की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि ऐसे में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से नए सिरे से जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि ADB को गरीबी कम करने और कम आय वाले देशों के विकास के अपने मुख्य एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं पर भी गौर करना चाहिए। देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में पिछले महीने 1% की गिरावट आई है। इसकी वजह यह है कि 1 अप्रैल से सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने की वजह से खरीदारों ने मार्च में वाहन खरीदना अधिक पसंद किया। वाहन डीलर संघों के महासंघ ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री अप्रैल 2023 में घटकर 282,674 इकाई रह गई। अप्रैल 2022 में ये 246,539 इकाई रही थी। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बयान में कहा, यात्री वाहन खंड ने 2022-23 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की थी, लेकिन अप्रैल में यात्री वाहन बिक्री कम रही है। इसकी मुख्य वजह पिछले साल का ऊंचा आधार प्रभाव तथा OBD2A नियम है, जिसकी वजह से वाहन महंगे हो गए हैं और लोगों ने अप्रैल के बजाय मार्च में वाहन खरीदना बेहतर समझा। अप्रैल में दो पहिया वाहनों का पंजीकरण 7% घटकर 12,29,911 इकाई रहा, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 13,26,773 इकाई था। सिंघानिया ने कहा कि बिक्री में गिरावट का कारण OBD2A की ओर स्थानांतरण, बेमौसम बरसात और मार्च में खरीद को प्राथमिकता रही। सिंघानिया ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने अभी तक महत्वपूर्ण प्रगति नहीं दिखाई है। कोविड पूर्व की अप्रैल 2019 की अवधि की तुलना में दो पहिया वाहनों की बिक्री अब भी 19% कम है। ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के मूल वेतन के 1.16% के अतिरिक्त योगदान का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ताओं के योगदान से किया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने बुधवार शाम जारी बयान में कहा, भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12% योगदान में से ही 1.16% अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा, EPF और MP अधिनियम की भावना के साथ साथ संहिता कर्मचारियों से पेंशन कोष में योगदान की परिकल्पना नहीं करती है। वर्तमान में सरकार कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान के लिए सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये तक के मूल वेतन का 1.16% भुगतान करती है। EPFO द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नियोक्ता मूल वेतन का 12% योगदान करते हैं। नियोक्ताओं के 12% के योगदान में से 8.33% EPS में जाता है और शेष 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है। अब वो सभी EPFO सदस्य जो उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की सीमा से अधिक अपने वास्तविक मूल वेतन पर योगदान करने का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें EPS के लिए इस अतिरिक्त 1.16% का योगदान नहीं करना होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने उपरोक्त को लागू करते हुए 3 मई 2023 को दो अधिसूचनाएं जारी की हैं। मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के फैसले के सभी निर्देशों का अनुपालन पूरा कर लिया गया है। नकदी संकट से जूझ रही किफ़ायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन गोफर्स्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण से कई अंतरिम निर्देश देने की अपील की है। गोफर्स्ट ने अपनी अपील में कहा है कि NCLT विमानों को पट्टे पर देने वालों को अपने विमान वापस लेने से रोके और साथ ही नागर विमानन महानिदेशालय को किसी तरह की जबरिया कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दे। वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन पर 11,463 करोड़ रुपए की देनदारी है। कंपनी ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए आवेदन किया है। एनसीएलटी की दिल्ली पीठ बृहस्पतिवार को गो फर्स्ट की अपील पर सुनवाई करेगी। गो फर्स्ट ने 3 मई से 3 दिन के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एनसीएलटी के समक्ष दायर अपनी याचिका में एयरलाइन ने विमान पट्टेदारों को कोई भी वसूली कार्रवाई करने से रोकने के साथ साथ डीजीसीए और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को जबरिया कार्रवाई से रोकने की अपील की है। अपील में यह भी कहा गया है कि डीजीसीए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और निजी हवाई अड्डा परिचालक को एयरलाइन को आवंटित प्रस्थान और पार्किंग स्लॉट को रद्द नहीं करें। एयरलाइन ये भी चाहती है कि ईंधन आपूर्तिकर्ता विमान परिचालन के लिए आपूर्ति जारी रखें। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।